بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال، اسلام آباد میں حکومت مخالف دھرنے. اس موضوع پر گفتگو ہوگی مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے حکومت کے خلاف احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک طرف جہاں ڈاکٹر طاہر القادری نے پارلیمانی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، وہیں عمران خان کی جانب سے اسمبلیوں سے استعفے کے اعلان کے بعد سیاسی صورتحال اور زیادہ غیر یقینی کا شکار ہو گئی ہے. عمران خان نے تو منگل کو ریڈ زون میں داخل ہونے تک کا اعلان کر دیا، جہاں جانے پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے. تاہم انہوں نے اپنے کارکنوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ ریڈ زون میں پورا امن رہیں گے. اس درمیان اسمبلیوں سے استعفوں کے عمران خان کے اعلان کے بعد سیاسی جماعتوں میں جملہ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے کہا ہے کہ یہ اعلان جمہوریت کے لیے اچھا نہیں، جبکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کے سارے ہی اقدامات جمہوریت کو مستحکم بنانے کے لیے ہیں. اگرچہ اب احتجاج کرنے والی دونوں جماعتوں کی طرف سے حکومت کو دی گئی مہلت ختم ہو گئی یا پھر ختم ہونے والی ہے، لیکن صورتحال جوں کی توں ابہام سے دوچار ہے. تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے. اگرچہ فوج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پوری صورتحال میں وہ غیر جانبدار ہے، لیکن وزیراعظم اور آرمی چیف کی تازہ ملاقات کو کافی اہم مانا جا رہا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ماضی میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں جب سیاسی بحران کو حل کرنے میں فوج کو مداخلت کرنی پڑی. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کے اتنے سنگین مطالبات کے پیش نظر معاملے کا تصفیہ کس انداز میں ہوتا ہے، جبکہ حکومت اور مارچ کرنے والی جماعتیں دونوں ہی کم سے کم ابھی تک اپنے اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر مہمانوں کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
پاکستان میں سیاسی بحران جاری اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا مارچ چھٹے دن بھی جاری ہے، اور اب انہوں نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب ریڈ زون کی جانب مارچ کی قیادت کریں گے، جس کے بعد اسلام آباد میں ریڈ زون میں ہائی الرٹ ہے. دوسری جانب پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی منگل کی شام عوامی پارلیمنٹ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا آزادی مارچ اور پاکستان عوامی تحریک کا انقلاب مارچ پچھلے ہفتے جمعے کی شب اسلام آباد پہنچا تھا. پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان مسلم لیگ نون پر گزشتہ سال ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ آزادی مارچ کے ذریعے پاکستان سے بدعنوانی کا خاتمہ کر کے ایک حقیقی جمہوریت لے کر آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ نواز شریف سے استعفی لیے بغیر اسلام آباد سے نہیں جائیں گے. دریاسنا پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسمبلیوں سے استعفے کا فیصلہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے، جبکہ متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما الطاف حسین نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے اپیل کی ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہونے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں. لیکن پاکستان کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے اسلام آباد میں مارچ کی وجہ سے تشدد پھوٹ پڑا تو مارشل لاء کے امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جبکہ پاکستان میں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور آئین کے متعلق ایسی باتیں نہ کی جائیں جن سے ملک کی بدنامی ہو، اور یہ کہ تمام اپوزیشن جماعتیں عمران خان اور طاہر القادری سے بات کرنے پر متفق ہیں. دریاسنا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ دھرنے کی ناکامی کا بدلہ پاکستان سے نہ لیں. انہوں نے عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کے اعلان اور اسمبلیوں کے استعفے کے اعلان پر سخت تنقید کی ہے. بہرحال عمران خان اور طاہر القادری کے مارچ کے سلسلے میں مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، جہاں کچھ لوگ اسے ناکام قرار دے رہے ہیں، وہیں دوسرے کچھ لوگ اسے بے حد کامیاب قرار دے رہے ہیں. خبریں تو یہ بھی ہیں کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے شرکا کو اسلام آباد پہنچنے پر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ کچھ رپورٹوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ کے دھرنے میں شریک کارکنوں کا آپس میں جھگڑا بھی ہوا، اور یہ جھگڑا کرسیوں پر ہوا تھا. بہرحال یہ لانگ مارچ کامیاب ہے یا ناکام، اس کا اصل فیصلہ تو اس کے نتیجے کے بعد ہوگا، لیکن فی الحال پاکستان میں جس طرح کا ماحول ہے اس سے تجزیہ نگاروں کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور اس ملک کو جس طرح طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے اس کے پیش نظر سول نافرمانی سمیت عمران خان اور طاہر القادری کے کئی فیصلے پاکستان کو مزید مسائل میں مبتلا کر سکتے ہیں، جبکہ یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ پاکستانی عوام ان فیصلوں پر عمل درآمد میں کس حد تک آگے جائیں گے۔ اس لیے اس انقلاب کے رہنماؤں کو کہ جس کے خد و خال واضح نہیں ہیں، اپنی عوامی طاقت کا بخوبی اندازہ لگانے کے بعد ہی فیصلہ اور اس کا اعلان کرنا چاہیے، اور ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے جن سے یہ محسوس ہو کہ وہ مفاہمت کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔
یا ناظرین، اب چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں برصغیر کے امور کے ماہر بیرسٹر یوسف اختر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
بیرسٹر یوسف اختر صاحب، اب تک کی جو صورتحال ہے مارچ اور دھرنے کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں تک یہ مارچ اور دھرنے کتنے کامیاب رہے؟
دیکھیے، جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تعداد بہت زیادہ ہو تو کامیاب ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دونوں لوگ جو دھرنا دے رہے ہیں، قادری صاحب، طاہر قادری اور عمران خان صاحب، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو بلا شبہ 100,000 سے تو کہیں کم نہیں ہیں، لیکن اگر 10-15,000 ادھر ادھر کم بھی ہیں تو یہ دیکھیے، 5 روز سے وہ آسمان تلے شدید بارش میں اور بعض اوقات شدید سردی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، ملازمتیں چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر۔ تو وہ جو ہے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کی جو ڈیڈیکیشن ہے، اس ڈیڈیکیشن کی وجہ کیا ہے، وہ کیا دماغ خراب ہے ان کا جو یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب آ کر باہر بیٹھ جائیں اور کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں منوانا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دھرنا بہت کامیاب رہا ہے اور تمام دنیا کو اس نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور پاکستان کے جو حقیقی حالات ہیں ان کی طرف توجہ مضبول کرائی گئی ہے، اور جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو اعلی پیمائش ہے وہ صرف تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے جو نہ تو کوئی کسی تشدد پسندانہ جماعت کے سربراہ ہیں، وہ ایک مذہبی جماعت کے بھی سربراہ ہیں اور پروفیسر آف لاء ہیں۔ ان کی بڑی گہری نظر ہے تمام امور پر، پاکستان سے ہی ہیں وہ، اپنا اس میں سرگودے کے پیداوار ہے، تمام زندگی ان کی لاہور میں ہی گزری ہے، اور اب باہر کے ممالک میں بھی رہ چکے ہیں، برطانیہ میں بھی ان کے ادارے ہیں اور تمام یورپ میں بھی ہیں، کینیڈا کے بھی نیشنل ہیں۔ تو انہوں نے بغور تمام دنیا میں دیکھا ہے کہ جمہوری ادارے کس طرح چلتے ہیں، وہاں عوام کی کس طرح پذیرائی ہوتی ہے، اور جو سیاسی حکمران ہیں، وہ حکمران جو ہیں ملکوں کے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے عوام کے لیے، اور پاکستان میں جب اس کا تقابل کیا جائے تو اس کو دیکھ کر ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عام حالات میں جو ہے نا عام طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے تشدد کا راستہ استعمال نہیں کیا۔ 5 دن میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، گھاس کا ایک پتا نہیں ٹوٹا، تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور کامرانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔
یوسف اختر صاحب، پاکستان میں بعض سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ مارچ کرنے والی جماعتوں کے رہنماؤں کو کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے یا ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے بیرون ملک پاکستان کی بدنامی ہو۔ آپ نے کہا کہ پوری دنیا کی نگاہ اس وقت پاکستان پر جمی ہوئی ہے، تو کیا ان رہنماؤں کو، جیسا کہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، ایسے بیانات دینے چاہیے جس سے خدا نخواستہ پاکستان کا وقار مجروح ہو؟
دیکھیے، بیانات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جب مطالبات پیش کیے جاتے ہیں اور جب ہر طرف سے ناکام ہو کر، ہر طرف سے مایوس ہو کر جب آدمی دیتا ہے تو لہجے میں کچھ تلخی آ ہی جاتی ہے، اور مطالبات میں بھی کچھ زیادہ ذاتی کا یا تشدد کا عنصر نظر آتا ہے، اگرچہ انہوں نے تشدد پر کسی کو ابھی تک اسایا نہیں ہے۔ سراسر وہ پرامن لگتے ہیں مجھے، اور قانون کے دائرے میں ہی لگتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ انگلش کا ایک مقولہ ہے कि ए रायट इज दी वॉइस ऑफ द अनहर्ड। जब अदालतें किसी को ना सुने, जैसा कि आप सबको इल्म है पाकिस्तान में कादरी साहब ने वहाँ पर जब वो जा रहे थे 2 हफ्ते पहले, तो वहाँ जो पुलिस ने उन पर वहशियाना तशद्दुद किया, उनके कारकुनान पर 14 लोगों को शहीद कर दिया बगैर किसी इश्तियाल के, और उसकी आज तक किसी अदालत में किसी थाने में उसकी FIR भी दर्ज नहीं कराई जा सकी। बाकायदा उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, कहा है, अपीलें की हैं, लेकिन वो बात सुनी नहीं गई। तो ये कौन सा महज़ब तरीक़ा है कि आप वो लाशें हवाले भी ना करें और लोगों को बग़ैर किसी इश्तियाल के और उसको बेरहमी से कत्ल कर दें, जिसमें 2 औरतें भी शामिल थीं, हामला औरतें भी शामिल, उनके मुंह पर गोलियां मारी गईं। तो अगर इन हालात में, जबकि उनके साथ इतना जुल्म हुआ, अगर उनके लहजे में कुछ तलखी आ जाती है, तो उसको मैं नहीं समझता कि वो कुछ नाजायज़ चीज़ है। और अगर मुतालबात जो हैं उसके अंदर भी अगर सख्ती आ जाए, तो तमाम दुनिया का जहाँ तक तरीक़ाकार है वो यही होता है कि ज़रा अब मुतालबात कुछ बढ़ा कर पेश किए जाएँ, ताकि किसी दरमियानी जगह आकर उनका तस्वीया हो जाए। लेकिन ये इसमें तो कोई शक नहीं, और कोई भी वायलेंस को, इश्तियाल को, तशद्दुद को पसंद नहीं करता और ना करना चाहिए, और ना अब तक उनकी तरफ से कोई ज्यादती हुई है। पाकिस्तान की जो बेइज्जती है, उस जहाँ तक उसका ताल्लुक है मुल्क से बाहर, वो यकीनन नहीं होनी चाहिए। मैं भी पाकिस्तानी हूँ और भी लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन अपने जायज़ मुतालबात का अदा करना, उसको मरवाना, अवाम की यानी दुनिया की तमाम तवज्जो को अवाम के मसाइल की तरफ मबजूल करना, ये जो है ये कोई ज्यादती नहीं है। इसमें किसी मुल्क की से सिर्फ अगर महजबाना आप तरीक़ाकार की बात करें, तो इससे बात नहीं बनती, जबकि पता ये चले कि जनाब अली उनके साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के तमाम अदारे ये इस्तेसाल का आला बन चुके हैं। वो लोग मुसल्लत हैं, चंद मफाद परस्ताना टोला है, इस्तेसाल पसंदाना टोला है, जो अवाम की गर्दनों पर 66 साल से मुसल्लत है। उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही। मुझे कहने की इजाज़त दें, यही क्या हालात ईरान में नहीं थे जी? आयतुल्ला खुमैनी साहब के इनकलाब से पहले, अजीमुशान इनकलाब से पहले, क्या वहाँ कोई कानून नहीं था? क्या वहाँ कोई आईन नहीं था? क्या वहाँ कोई सिलसिला नहीं था? वो तमाम चीज़ें बिलाशुबा मौजूद थीं, लेकिन जब लोगों ने यह देखा, जब उलमा ने यह देखा, जब मरहूम आयतुल्ला खुमैनी ने यह देखा कि अवाम के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, कानून के नाम पर और ये तमाम चीज़ों के नाम पर ये सिर्फ इस्तेहाल हो रहा है लोगों का, और किसी सूरत भी जो अदारे हैं जो दादरसी के लिए बनाए गए हैं उनकी तरफ रुजू करने से जब इंसाफ ना मिले, तो उसमें खिलाफ है वो जो कहते हैं गैर मामूली हालात जो हैं वो गैर मामूली इकदाम के मुतकाजी होते हैं। तो इसलिए वहाँ इनकलाब आया। ए रेवोल्यूशन इज़ द वॉइस ऑफ द अनहर्ड। तो अगर आप बाज़ाब्ता तरीके से नहीं सुनेंगे, अदालतों के दरवाजे नहीं खुलेंगे, उनकी मजलूमों की, शहीदों की आहो पुकार को नहीं सुना जाएगा, उनकी जो शिकायत है कानूनी तौर पर जो दर्ज होनी चाहिए वो नहीं होगी, बल्कि उनके खिलाफ जाकर आपने वो FRI बना दी उन्हीं के खिलाफ, 14 आदमी उनके मरते हैं, लेकिन पुलिस जाकर उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है और हुकूमत टस से मस नहीं होती। इंक्वायरी कमीशन जो बनते हैं वो उसमें भी तमाम जाता है जो उनके मंजूर नजर हैं।
जी, मैं फिर आज उनका आपके
ये जो इंकलाब की बातें हो रही हैं, जो मुतालबात किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कोई गलत नहीं है, और लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वहाँ को मजीद खून रेजी नहीं होगी और हुकूमत अकल के नाखून लेगी।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊँगा। चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर इस वक्त रबते में है पाकिस्तान के सीनियर तर्ज नगार और मुमताज़ दानश्वर साकिब अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी साकिब अकबर साहब, सवाल तो यही कि अब तक की सूरत हाल क्या है?
इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि दोनों जो मार्चेज हैं, जिसको एक इंकलाब मार्च या आज़ादी मार्च, उनके कायदीन ने जो है वो रेड जोन की तरफ आगे बढ़ने का फैसला कर रखा हुआ है। अभी चंद मिनट पहले जो है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी आवाम से, जो लोग उनका मौत मौजूद है, उनसे एक एक करके जो मुतालबात थे अपने, उनके मुतालबात के हक में उनसे राय ली है, और उसके बाद उन्होंने भी आगे बढ़ने और मार्च
जोन की तरफ करने का जो है वो फैसला किया है।
जी
और दूसरी तरफ अपना इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि ये जो रेड जोन के अहम तरीन इमारात हैं और रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वो फौज के हवाले कर दी जाए। इस सिलसिले में चंद मिनट पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने और उन्होंने इस फैसले का जो है वो ऐलान किया है। इससे ये जाहिर होता है कि सिक्योरिटी ठीक है बड़ी अहम इमारतों की उन्होंने हवाले की है, लेकिन जैसा कि वजीर दाखिला ने भी कहा है कि ये लेयर्स हैं इन स्मॉग को रोकने के लिए, पहले पुलिस है, फिर उसके बाद एफसी है, फिर उसके बाद रेंजर्स है, फिर उसके बाद फौज है, तो फौज को उन्होंने जो है वो आखिर में रखा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि वो इसको एक और भी जो खबर आ रही है गवर्नमेंट के हलकों की तरफ से वो ये है कि किया गया है कि वो गोली ना चलाए। अब ये देखना ये है कि अगर ये मॉब आगे बढ़ता है तो पुलिस इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, क्या थोड़ा बहुत रोकने के बाद इनको आगे जाने की इजाज़त देती है या नहीं देती, ये मसला अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है। अलबत्ता ये है कि अगर इन्होंने ये चाहते हैं कि सिलसिला पुरअमन रहे और खून ना बहे तो मेरा ख्याल है थोड़े बहुत रुकावट डालने के बाद इनको आगे बढ़ने की इजाज़त देंगे और इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं वो फकत उसका दिफा और उसका उसकी हिफाजत जो है वो फौज के हवाले रहेगी। बज़ाहिर जो सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद में मर्ज की हुई है वो इस तरह की है। इसी तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है और वजीर दाखिला ने कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर दोनों कायदीन के पास जाने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन्होंने कहा है कि वो किसी और से मिलना चाहें, इसहाक डार से मिलना चाहें, वो भी जाके मुलाकात करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर दाखिला ने कहा है कि मेरी इमरान खान से जो है वो मेरा रबता जो है वो कायम है। इसी तरह से पाकिस्तान की दीगर तमाम सियासी कुवतों ने कहा है कि हम मुज़ाकरात का इंतज़ार कर रहे हैं, हमने बहुत रबते की कोशिश की है इमरान खान की तरफ से, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से मुज़ाकरात के लिए कोई उनकी जो पेशकश है उसका मुस्बत जवाब नहीं आया। जहाँ तक डॉक्टर ताहिर अल-कादरी का ताल्लुक है उनके दूसरे दर्जे की क़यादत से जो है वो एक अपोजिशन के वफद ने मुलाकात की है, लेकिन ज़ाहिरन ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त तक हमने समझी है वो ये है कि असल इकतदार जो है या फैसले की ताकत जो है वो ताहिर अल-कादरी साहब के हाथ में है। जब तक उनके साथ बैठ के बातचीत नहीं की जाए, गुज़श्ता साल के धरने में भी यही हुआ था, दो साल पहले जो हुआ कि फैसला एक आदमी ने करना होता है और वो ताहिर अल-कादरी हैं इस जमात में अवामी तहरीक में, तो नीचे जो है वो किसी के पास इख्तियार नहीं है, ये पोजीशन है इस वक्त जो है। लेकिन अभी तक कोई मॉब जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ा।
जी बहुत शुक्रिया राशिद अहद साहब, इस वक्त मौजूद हैं हमारे कराची स्टूडियो में पाकिस्तान के तज़ निगार। अस्सलाम वालेकुम जनाब। राशिद अहद साहब
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
जी बहुत शुक्रिया राशिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि अभी साकिब अकबर साहब ने भी इशारा किया कि खुद हुकूमती हलके, हुकूमत के वज़रा, अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा सब इमरान खान और ताहिर अल-कादरी साहब से बातचीत के लिए तैयार हैं और बार बार अपनी आमादगी का ऐलान कर रहे हैं, तो इधर से मुज़ाकरात का इसरार और उस तरफ से मुज़ाकरात से इनकार, इसकी क्या वजह हो सकती है इनकार की?
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब इस इनकार की वजह महज ये है कि इमरान खान और ताहिर अल-कादरी एक अपना हदफ यानी कि हुकूमत को या तो हुकूमत के सुकूत का हदफ तय किए हुए हैं। इस वजह से जाहिर है कि जब तक के वो नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को इक्तदार से बरतरफ नहीं देख लेंगे उस वक्त जाहिर है कि उस इस हदफ में उनको कामयाबी नहीं होगी अगर वो मुज़ाकरात की तजवीज़ को तस्लीम कर लेते हैं। चुनांचा उनका जो हदफ है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कम से कम, वो तो वैसे तो वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ही को बरतरफ कर दें, लेकिन कम से कम उनका ये हदफ है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इक्तदार से बरतरफ हो जाएं। तो जब तक ये हदफ उनको यानी इस हदफ के हुसूल में मुज़ाकरात उनको सबसे बड़ी रुकावट मालूम हो रही, मुज़ाकरात की पेशकश को वो फिर कैसे कबूल कर सकते हैं। लिहाजा इस वजह से वो बावजूद जो सालिसी का फरीजा अंजाम देने वाले ये लोग हैं, यानी पीपुल्स पार्टी हो या दूसरी दूसरों की तरफ से पेशकश आ रही हो मुज़ाकरात की, उसको उसको ठुकराना उनके लिए जरूरी है। इसलिए कि वो हर हाल में कम से कम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुस्तफी हो जाएं। अगर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बरतरफ न भी हो तो ये कम से कम हदफ हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से वो अपने मुजाकरात से को की तजवीज को कबूल करने से हर हाल में इनकारी हैं। जी
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन। यूसुफ अख्तर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर जैसा कि पाकिस्तान में बहुत से हलकों का कहना है कि ये सिलसिला जारी रहा और इमरान खान या ताहिरुल क़ादरी साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए और हुकूमत गिर जाती है, एक मुंतखब हुकूमत, ये पाकिस्तान में बहुत से हलकों का कहना है, ख़ासतौर पर सहाफती हलकों का, तो आइंदा के लिए मिसाल बन जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान ही वज़ीर आज़म बन के आते हैं और भारी मैंडेट के साथ आते हैं, तो मुमकिन है उनके खिलाफ कोई दूसरा खड़ा हो जाए और वो भी इसी तरीके की तहरीक शुरू कर दे, तो ये एक गलत रवायत नहीं पड़ जाएगी?
देखिए, यकीनन ये गलत रवायत पड़ सकती है अगर, लेकिन देखना यह है कि ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये हंगामा जो है या अपना जो एहतजाज है ये हो क्यों रहा है। हमको ये देखने के बजाय कि एक हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, इनकी इमरान की हुकूमत आती है या कादरी साहब की हुकूमत आती है, तो अगर वो भी उसी तर्ज अमल का मुजाहरा करें, अवाम के हकूक़ को बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दें, मुल्क के तमाम वसाइल पर पीरान तस्मा पाक की तरह मुसल्लत हो जाएं और उसको अपने ख़ानदान के लिए वक्फ कर दें। अब 24 लोग उनके अपने घराने के इस वक्त मुख्तलिफ यानी कौमी असम्बली पार्लियामेंट उसमें सैनेट में और सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं, तमाम वसाइल जो हैं वो उनके पास हैं, जहाँ जहाँ कहीं जाते हैं, किसी मुल्क का दौरा करते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, वहाँ सिर्फ ख़ानदान के अफराद और बराए नाम एक दो लोग और चले जाते हैं और वो किसी किस्म की भी मुल्क के अंदर जो आइन है उसको उसका नफाज नहीं चाहते। वहाँ पर जो बल्दियाती निज़ाम है, जो आइन का तकाजा है, उसकी तरफ रुजू ही नहीं किया जाता, बल्कि पंजाब हुकूमत में सबसे ज़्यादा उसकी मुखालफत हुई। जो बुनियादी हकूक़ हैं अवाम के, वो देने को तैयार नहीं हैं। लोगों मुलाजमत को लिए मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, माएँ अपने बच्चे बेच रही हैं, दोशीजाएँ जो हैं वो अपनी इस्मतें बेच रही हैं, वहाँ बेकारी, बीमारी, भूख, नंग, अफलास जो है, और जो असल जो बात जो है वहाँ पर लोड शेडिंग का ये आलम है कि 12-12, 15-15 घंटे बिजली नहीं आती। इन लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं है, वो सिर्फ अपनी अय्याशियों की तरफ है। अगर इमरान की हुकूमत बनती है और अगर ये इनकी कादरी साहब की हुकूमत बनती है और फॉर दैट मैटर किसी की भी हुकूमत बनती है, अगर उनका तर्ज अमल भी यही रहा तो फिर कोई और अगर कोई आता है तो हम उसको लबैक कहेंगे और उसका उनका जायज़ मुतालबा है ये, तो क्योंकि तमाम मुल्क जो है अब 66 साल से इस ये मुसल्लत है टोला इस्तेसाली और उसको किसी किस्म के भी जो हकूक़ हैं वो देने को तैयार नहीं है। आइन जो पाकिस्तान जो लोग उससे आशना हैं, और मैं ख़ुद कानून का एक तालिब इल्म हूँ और कानूनदान हूँ, उसके पहले 40 जो शिक़े हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको मुअत्तल किया हुआ है। वो तमाम के तमाम जो हैं वो अवाम के लिए हैं, उनकी बहबूद के लिए हैं, उनकी फलाह के लिए हैं, उनकी मुल्क की तामीर के लिए हैं, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। सिर्फ उन दफात पर जोर है जो पार्लियामेंट क्या हो, वज़रा की क्या तनख्वाहें होंगी, या सदर किस तरह बनेगा, या वज़ीर आज़म किस तरह बनेगा, सारा जोर इस वक्त है। इस वक्त जो अपोजिशन पार्टियाँ इनकी मुखालफत कर रही हैं, एक निज़ाम तो होना चाहिए और यकीनन होना चाहिए, लेकिन अगर वो आइन के तहत चले, आइन के तहत तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, उन तमाम चीज़ों को तो मुअत्तल किया हुआ है, इसीलिए ये लोग बाहर आए। अगर कोई भी दूसरा आकर इनको नज़रअंदाज करता है इसी तरह, जो सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत की बात नहीं है, इन्होंने तो बदतरीन मुजाहरा किया है, लेकिन उससे पहले भी जो टोला था 5 साल रहा है उन्होंने भी मुल्क के वसाइल को लूटा, उन्होंने भी नजरअंदाज किया। एक खानदान की हुकूमत कायम है, पहले भुट्टो साहब थे, फिर उनकी बेगम आई, फिर उनकी बेटी आई, अब फिर उनका दामाद आया, अब उनका वो जो नवासा है वो मौजूद है। ये खानदानी बादशाहते हैं, जमहूरियत का तो नाम है जी, आइन का तो नाम है जमहूरियत का, और उसका तो नाम है अदालतों का, लेकिन ना इंसाफ मिलता है ना जमहूरियत है। जमहूर अवाम को कहते हैं, जमहूर वो, लेकिन उसको लोगों को तो जमहूर कहना भी नहीं आता, वो जमहूर जमहूर कहते हैं। ये हालत ये है कि जाहिल है मुतलक जो हैं वो पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए बैठे हुए हैं और उस पर मुसल्लत हैं। जब वो इंतखाबात होते हैं उसमें जो टिकट दिए जाते हैं वो करोड़ों रुपए में बिकते हैं, और इन पार्टियों के सरबराहान जो हैं, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, इंक्लूडिंग जरदारी साहब, इंक्लूडिंग जो दूसरे मौलाना साहब हैं, उनकी अपनी जाती जेबों में जाते हैं। वो हुकूमत की तरह नहीं, यहाँ का निज़ाम जो दुनिया के तमाम महजब मुल्कों का निज़ाम है वो निज़ाम तो कुछ और है, वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए है, वो फलाही रियासतों के काम के लिए होता है। यहाँ सिर्फ हुकूमतें बनती हैं, आइन है, दस्तूर है, कानून है, हर चीज़ मौजूद है, सो फार बुक्स आर कंसर्न, लेकिन उस पर अमल जो है वो सिर्फ इस्तेसाली टोले के लिए है। जब लोगों से कहा जाता है कि वो जब आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं उनसे कहते हैं अदालतों का तरफ रुजू करो, और अदालतों में 20-20 साल 30-30 साल उन मुकदमात की सुनवाई नहीं होती। 30-70 मुकदमात जो हैं सिर्फ जो करप्शन के हैं वो नवाज शरीफ साहब के जाती तो
जी बैरिस्टर साहब, मैं फिर हाजिर हूँ, आपकी संदत में इजाज़त देंगे मुझे। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू मेहमानों से जारी है, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक या वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी संदत में हाजिर होते हैं। जी एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। साकिब अकबर साहब, इमरान खान ने जिस सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था, पाकिस्तान के जो ज़राए इब्लाग हैं, मीडिया हैं, उनके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि इसकी पजीराई नहीं हुई इस ऐलान की, तो क्या अब वज़ीर आज़म के इस्तीफे से कम पर किसी बात पर इत्तेफाक या डील हो सकती है? साकिब अकबर साहब, ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राशिद अहद साहब, अगर आपने मेरा ये सवाल सुना हो तो इसका जवाब चाहूंगा आपसे कराची स्टूडियो में। जी
जरा फिर से रिपीट कर दीजिए सवाल को अपने।
मैं आज ये कह रहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऐलान किया इमरान खान साहब ने, ख़ुद पाकिस्तान के जो ज़राए इब्लाग हैं, मीडिया है, उनमें ऐसा लगता है कि आवाम की तरफ से इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं हुई, तो अब ऐसे में क्या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफ़े से कम पर किसी बात पर इत्तेफाक या कोई डील या कोई मुआहदा या समझौता हो सकता है?
देखिए असल मसला यह है कि अवाम में अगर इस सिविल नाफरमानी की पजीराई नहीं हुई तो ये एक फितरी अमर है। असल मसला यह है कि ये सारी चीज़ें चाहे लोग बताएं नहीं, एक ये जो टेंशन है सिविल मिलिट्री टेंशन की पैदावार है ये बहरान सियासी, और इमरान खान वगैरह की जो मसल के उनके मौकफ को जो जस्टिफाई किया जा रहा है वो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। यानी ये बहुत ही फितरी, यानी आवाम का इज्तमाई जमीर इस बात को महसूस कर रहा है कि ये बहुत ही फितरी एकदम नहीं है। चुनांचा वो सिविल नाफरमानी वगैरह को भी वो समझते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, एक बिला वजह का यानी कि एक डिस्टरबेंस रनिंग पॉलिटिकल सिस्टम में एक बिला वजह का डिस्टरबेंस के लिए। इज्तमाई जमीर जो है अवाम का होता है वो बड़ा हसास होता है, बावजूद कितना ही मीडिया और बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े सियासतदान हकायक को कुछ भी शो करें, चाहे कहें कि ये ख्वाब ये साबित करें कि ये एक बहुत ही फितरी गोया के एक टर्मोइल है, एक नेचुरल टर्मोइल है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सूरत हाल में, एक नेचुरल टर्मोइल है, लेकिन हकीकत यह है कि नेचुरल टर्मोइल नहीं, ये एक बहुत सारे बहरानों का तसलसल है और पाकिस्तान में जितने भी सियासी बहरान आए उसमें बेशतर बहरान जो है वो मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप में टेंशन की वजह से उसके सबब हुआ है। खा इस बात को लोग बयान करें या नहीं बयान करें, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है, एक रियलिटी है, इससे इनकार नहीं किया सकता। अवाम इस बात को अब समझने लगे हैं, चुनांचा इसमें कोई बहुत ज्यादा अवाम की जो नेचुरल इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। मीडिया की वजह से, चूंकि अब इतने चैनल्स खुल गए हैं, लोग दिन रात उनके अटेंशन को प्रीऑक्यूपाई कर लेते हैं मीडिया, और मीडिया बहरहाल एक बिल आखिर बहालत यानी लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि आया इतना मीडिया से इस बात की तकरार हो रही है तो आया हम जो दिल से समझ रहे हैं कि ये एक फेक चीज है तो वो यानी उस पर उनको शक होने लगता है, अपने गोया जमीर की आवाज पर भी शक होने लगता है। वरना हकीकत यह है कि ये मिलिट्री सिविल मिलिट्री टेंशन का नतीजा है और इसके नतीजे में कोई भी चीज, सिविल नाफरमानी या कोई भी ताहिर कादरी साहब की बहुत सारी बातें आवाम को यानी कि हजम नहीं हो रही हैं। दरअसल सही बात यह है कि इस ये बहरान सही बात है कि पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए, सियासतदानों को समझ जाइए कि भाई पाकिस्तान में मिलिट्री एक एज रखती है, मिलिट्री ने बहुत ज्यादा मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम पर हावी रही है और उसने इंटरनेशनल प्लेयर्स का मुकाबला भी किया है, उसको उसकी दुश्मनें और ये रहे, तो एक मिलिट्री की एज है। अब पॉलिटिशियंस को ये करना चाहिए कि वो सिविल मिलिट्री एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। जरदारी साहब ने इस मामले में कुछ किया और किसी तरीके से 5 साल तक ले गए, ये उनकी कामयाबी थी। अगर इसके बजाय अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई सियासी बहरान न पैदा हो तो अव्वल तो सियासतदानों को भी बहुत उसूल पसंदी का मुजाहरा करना होगा, सिर्फ जमहूरियत के हवाले से नहीं बल्कि यानी सियासतदानों के दावे तो होते हैं जमहूरियत के हवाले से कि भाई ये जमहूरियत के खिलाफ है, लेकिन सियासतदानों को और भी यानी करप्शन के मामले में बहुत साफ से मैन ऑफ कैरेक्टर बनना पड़ेगा, तभी जो है वो यानी कि मिलिट्री आर्मी समझती है कि ये जो मैं एक आपको मिसाल देता हूं, चंद रोज पहले ये टॉक शो में एजाजुल हक ने कहा नवाज शरीफ के हवाले से, वो उस जमाने की बात है जिस जमाने में ये जियो की क्राइसिस खड़ी हुई थी, तो उस जमाने में एजाजुल हक ने कहा कि सवाल मुश्किल ये है कि हमारे लोग नवाज शरीफ जैसे लीडर खुद मिलिट्री आर्मी के कांधों पर सवार होकर आते हैं और जब आते हैं तो हमें ही आंखें दिखाते हैं, तो कहने का मतलब कि हमारी ही बिल्ली हमें ही नहीं आओ। दरअसल ये चीज है असल सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप टेंशन, या तो सियासतदानों को अपने पूरे कैरेक्टर का इजहार करना चाहिए और खुद अपने आप को करप्शन से पाक करना चाहिए, वरना अगर ये नहीं करते हैं तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आर्मी के साथ मिलकर चलें, यही सूरत हाल है। और ये सब जो इनकलाब वगैरह की बात है ये तो एक इस सिनेरियो में एक फजूल सी बात है, एक आवाम को कंफ्यूज करने की बात है
जी। हाँ बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लाम आबाद में कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि इन हाउस तब्दीली की कोई सूरत निकल आए, तो क्या इसका इम्कान पाया जाता है? साकिब अकबर साहब
जी,
सवाल
एक
दफा
फिर करते हैं।
जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुछ खबरें ऐसी भी वहाँ से आ रही हैं या बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि मौजूदा सूरत हाल में जब मुतालबात इतने ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं तो मुमकिन है कि पार्लियामेंट के अंदर ऐवान के अंदर इन हाउस कोई तब्दीली हो जाए, तो क्या इसका इम्कान पाया जा रहा है?
बड़े कई दिनों से ये सवाल जो है ये ज़ेरे गर्दिश है और ज़ेरे बहस है, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान का माहौल है और जिस तरह की पार्टियां यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ तो एक फैमिली की लीडरशिप होती है और एक फैमिली की पार्टी होती है, उसी के जब सब लोग जो है वो जमा होते हैं। अब ये अंदर अगर बड़ी एक ग्रुप जो है तो वो बगावत पर आमादा हो जाए, ये किसी और को लीडर बनाने पर आमादा हो जाए, जिसके इम्कान पहले से जाहिर किए जा रहे हैं। बाद राय ये कहते हैं कि चंद रोज पहले तकरीबन 71 आदमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो तैयार थे कि वो इन फेवर ऑफ चौधरी निसार जो है वो वोट दें। अगर इस तरह की कोई बात आगे डेवलप हो जाए तो एक कानून, वैसे ये है कि अगर खुद नवाज शरीफ भी इस पे आमादा हो जाए तो एक आईनी और कानूनी रास्ता है तब्दीली का, लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी आमादगी का इजहार किया जा रहा है। अगर आमादगी का इजहार किया जाता तो ये तो आसान था, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेप डाउन कर जाता, क्योंकि 14 अपराध जो मॉडल टाउन में मारे गए वो तो उसकी क्यादत थी और उसकी ज्यूरिसडिक्शन थी, और ये आसान था कि छोटा भाई जो है वो स्टेप डाउन कर देता और एक तरह का ये समझे कि यहाँ पे जो इस वक्त सिचुएशन गवर्नमेंट के खिलाफ बनी हुई है उसको, वो भी तकरीबन पूरी तरह नहीं तो लेकिन काफी हद तक डिफ्यूज हो जाती। लेकिन ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि ये जो इस वक्त दो दिग्गज जो है जिनके गिर्द लोग यहाँ पे जमा हैं वो मुजाकरात के लिए आमादा हों। जाहिर है जब तक बैठेंगे नहीं, दूसरी पार्टीज की बात नहीं सुनेंगे, कोई वो कानूनी और आईनी नहीं निकालेंगे, तो फिर हम इस जो प्रपोजल आप जिसको कह रहे हैं कि जो जेर गर्दिश है उसको भी कोई यानी मैच्योर नहीं किया जा सकेगा उसके बगैर, बल्कि एक इजलास यहाँ पे जारी है जो खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में इजलास जारी है खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की मूवमेंट का, और बईद नहीं है कि ये यानी बाकी जो लोग हैं वो तैयार हो जाए जमात इस्लामी का चीफ मिनिस्टर लाने के लिए, क्योंकि जमात इस्लामी भी इस वक्त मायूस हो चुकी है अपने कोलिशन पार्टनर से कि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए सिराजुल हक साहब की जो लैंग्वेज, जो पहले जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बारे में, इस वक्त बदली हुई दिखाई देती है, यानी वो मायूस नजर आते हैं इस वक्त उनके तर्ज अमल से। तो इसका मतलब ये कि दो तरफा इस वक्त सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है, खुद खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी ऐसी एक सिचुएशन डेवलप हो रही है, लेकिन जितनी उधर हो रही है इस दर्जे की मेरा नहीं ख्याल के वफाकी सतह पे प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली के लिए इतनी बड़ी जो है वो मूव मौजूद हो। लेकिन बईद नहीं है कि अगर ये एक इशारा पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से हो जाए तो पीएमएलएन के अंदर भी जो है वो एक बड़ा धड़ा जो है वो किसी और को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आमादा हो। अभी चंद मिनट पहले जो नवाज अपना चौधरी निसार ने खिताब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा है कि मैंने आर्मी चीफ और वजीर आजम के सामने मीटिंग में कहा है कि इमरान खान अब भी मेरा दोस्त है, और इमरान खान ने भी अपनी तकरीरों में एक तरह की उसको दावत दी है कि आप आ जाए आप कहाँ हैं, तो इकट्ठे उसने कहा मैं भी दावत देता हूँ और परवेज खटक भी तुम्हें, हम दोनों दावत देते हैं कि तुम इधर आ जाओ। तो यानी चौधरी निसार के लिए एक नरम गोशा जो है वो उनके दरमियान भी पाया जाता है तहरीक इंसाफ के अंदर भी। तो बईद नहीं है कि आइंदा अगर कोई सोल्यूशन निकलता है इन हाउस और आईन के अंदर तो उसमें के एक तब्दीली जो है वफाकी सतह पर भी आ जाए।
जी साकिब अकबर साहब, अभी कुछ देर पहले आर्मी चीफ और वजीर आजम की दरमियान मुलाकात हुई, तो क्या इस मुलाकात को सिर्फ सिक्योरिटी के तनाजुर में देखा जाए जो इस्लामाबाद में रेड जोन है या जो शुमाली वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन जारी उसके ताल्लुक से, या जो मौजूदा सियासी बहरान है इसके ताल्लुक से भी इसको देखा जा सकता है?
मेरा ख्याल है कि असल में तो इस वक्त जो मीटिंग हुई है, अगर इन्होंने कहा है कि ये जो अपना कबायली इलाकों में जो ऑपरेशन जारी है उस हवाले से मीटिंग, तो वो भी जेर बहस आया, वो आया होगा अगर तो कंट्री है ये मीटिंग, इसमें कोई शक नहीं कि 3 घंटे जिसको कहा है चौधरी निसार में जारी रही है वो पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी और कैपिटल में जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसके तनाजुर में ये मीटिंग हुई है 3 घंटे, वरना मीटिंग जो है उस वो तो एक रूटीन में तयशुदा मामला जो है वो चल रहा है, उस सिलसिले में तो ये 3 घंटे की मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि सारी पार्टियां वैसे अपने सारे कार्ड जो है वो टेबल पे नहीं रखती, खासतौर पर तवक्को नहीं करनी चाहिए कि आर्मी चीफ ने अपने सारे कार्ड जो है वो टेबल पे रखे होंगे, आर्मी चीफ ने उनकी सुनी होगी, अपना नुक्ता नजर इस हवाले से पेश किया होगा कि जो हमारी आईनी जिम्मेदारियां हैं हम उसमें आपके साथ मदद करने के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है ये भी बात जरूर हुई होगी कि हम मॉब के सामने जो है वो नहीं आएंगे, बल्कि जो इंस्टॉलेशन है उनकी हिफाजत में हम अपना किरदार अदा करेंगे। यही वजह है कि मेरा नहीं ख्याल के हजारों में नहीं है फौज, फौज के सिपाही इस वक्त भी सैकड़ों में है, पहले 350 लोग मंगवाए गए थे। बहीद नहीं है कि इतनी सी एक यानी मजीद भी उसमें फौजी आ जाए बाज जगहों पर इंस्टॉलेशन या इमारतों की हिफाजत के लिए। मैं नहीं समझता कि हजारों की तादाद में फौजी जवान और अफसर जो है वो रेड जोन के इलाके में आएंगे। वो उसी सूरत में आएंगे जब उनका उन्होंने कोई और मंसूबा उन्होंने बनाया हो, और जब ये वो देखेंगे कि सूरत हाल जो है वो ऐसी हो गई है कि जो पुलिस या रेंजर्स की जो है वो गिरफ्त से बाहर निकल गई है। इसमें कोई शक हमें नहीं होना चाहिए कि अगर सूरत हाल बहुत संगीन हो जाती है और रेड जोन वाकई खून से रेड हो जाता है तो फौज जो है उसके पास कोई चाराकार नहीं रहेगा कि वो आके इकतदार को संभाल ले। पहले ही बड़ी बिल्डिंग उनके पास है, चंद अफराद को उन्होंने गिरफ्तार करना है और उन्होंने मेरे अजीज हम बतनों अस्सलाम वालेकुम कह के अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर देनी।
तो कितना इम्कान है जो आपका आखिरी जुमला था उसका?
मेरा ख्याल है ये डिपेंड करता है, अभी तक पॉलिटिकल फोर्सेस भी कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से टेबल टॉक जो है वो हो जाए। गवर्नमेंट की भी हम सब कोशिश है और बहुत इस सिलसिले में इंसिस्ट किया जा रहा है। वो गुजरा जो यानी चंद घंटे पहले तक या एक दिन पहले तक उनका लहजा सख्त था, अब उनका लहजा टूवर्ड ये जो अपना कायदीन है मुखालफत में खड़े हैं, यानी उनके लहजे में तब्दीली आई हुई है। वो कहते हैं कि हम तैयार हैं बात करने के लिए और बड़ा उनके लफ्जों में भी तब्दीली आई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी अंतर कोशिश यही है, अटमोस्ट कोशिश यही है कि किसी तरीके से इस सिलसिले को रोका जाए। मुझे ये भी वैसे शक है कि थोड़ा सा अपने जवानों की तरफ से इमरान खान भी दबाव में है। यहाँ ये उसके कई बॉडी लैंग्वेज नहीं बल्कि बाज अल्फाज भी जाहिर करते हैं कि वो अपने जवान और यूथ जिनको वो बहुत ज्यादा एक्साइट कर चुके हैं, अब उनके हाथों वो भी एक तरह से मुश्किल में है और यरगमाल हुए हुए हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका।
अभी वो जरा सा आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह से थोड़ी सी फ्लैश डेवलप करता है जिससे खुदा न खासा कुछ लोग मारे जाते हैं तो फिर इसका इम्कान है जिसका मैंने आखिर में जिक्र।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले चंद घंटे बहुत ही अहम होंगे, इंतज़ार कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।